हरे कृष्ण। सनातन धर्म में एकादशी तिथि का अत्यंत महत्व है। वैदिक गणना के अनुसार प्रत्येक माह में दो पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष एवं शुक्ल पक्ष। प्रत्येक पक्ष में एक एकादशी आती है, अर्थात माह में दो एकादशी। इसी दिन एकादशी का व्रत रखा जाता है, जो भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय है। हमारे वक्ता श्रीमान अतुल कृष्ण प्रभु जी इसी एकादशी व्रत के महात्म्य को अत्यंत सरल एवं सुंदर रूप में प्रस्तुत करेंगे। श्रीमान अतुल कृष्ण प्रभु जी मुंबई विश्वविद्यालय से साइंस में ग्रेजुएशन करने के पश्चात अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ के संपर्क में आए। लगभग 20 वर्षों से वे इस्कॉन में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। वर्तमान में वे इस्कॉन कारवार कर्नाटक के अध्यक्ष हैं व विभिन्न कॉलेजों व कंपनियों में मन पर नियंत्रण, मृत्यु के बाद जीवन, सफल शिक्षण कौशल व एकाग्रता एवं स्मरण शक्ति पर सेमिनार भी लेते हैं। प्रभु जी भारत में गोवा, मुंबई, मैंगलोर, बेंगलोर एवं वृंदावन तथा विदेशों में जैसे केन्या, युगांडा, जाम्बिया व मलावी में भी सेमिनार लेते हैं। तो आइए श्रीमान अतुल कृष्ण प्रभु जी के श्रीमुख से श्रवण करते हैं एकादशी व्रत का महात्म्य। धन्यवाद। हरे कृष्ण।
ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकं। वंदेहं श्री गुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्री रूपं साग्रजातं सहगन रघुनाथान्वितं तं सचीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादां सहगन ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। नमा ओं विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। मोक्षदा एकादशी बहुत ही पावन एकादशी है। मोक्षदा का अर्थ होता है मोक्ष प्रदान करने वाली। मोक्षदा, दा का अर्थ देने वाली, जैसे हम कहते हैं यशोदा, यशोदा का अर्थ है यश प्रदान करने वाली। ऐसे ही मोक्षदा, मोक्ष को प्रदान करने वाली ये एकादशी है। कृष्ण भक्तों के लिए तो इसका महत्व और भी बढ़ जाता है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने इस दिन को चुना भगवद गीता को प्रकट करने के लिए। अर्थात ये वो दिन था जब महाभारत का युद्ध प्रारंभ हुआ और उसके पहले भगवान ने इस भगवद गीता को प्रकट किया। तो इस दृष्टि से भी कृष्ण भक्तों के लिए इसका बहुत महत्व है। वैसे ब्रह्मांड पुराण में इसका महात्म्य दिया गया है। हर एकादशी का महात्म्य है। महात्म्य अर्थात उसको पालन करने का क्या लाभ होता है। जैसे हम कोई चीज़ पढ़ते हैं, जैसे श्रीमद् भागवत, तो भागवत का महात्म्य है कि उसको पढ़ने से क्या लाभ होगा। ऐसे ही एकादशी को पालन करने से, विशेषतः इस मोक्षदा एकादशी को पालन करने से क्या लाभ होगा, ये ब्रह्मांड पुराण में दिया गया है। तो ब्रह्मांड पुराण में एक कथा बताई गई है एक राजा की, जो बहुत प्रतापी राजा थे, अच्छी तरह सारी अपनी प्रजा को संतानों की तरह रखते थे। एक समय उनको स्वप्न में आया कि उन्होंने देखा कि उनके जितने पूर्वज हैं जो पितृलोकों में हैं, वो वहां ना रहकर नरक में कष्ट भोग रहे हैं। ऐसा कहा जाता है कि ऊंचे लोकों में एक लोक है जिसे पितृ लोक कहते हैं, और जब यहां से हमारे जो पूर्वज हैं अगर योग्य हैं तो वो पितृ लोक में जाते हैं, और वहां बहुत ऐश्वर्य है, बड़े आराम से रहते हैं, जब तक इस पृथ्वी से उनके जो वंशज हैं वो श्राद्ध करते रहते हैं वे पितृलोक में बने रहते हैं। लेकिन जैसे ही श्राद्ध करना बंद हो जाता है तो फिर वे वहां से नीचे आ जाते हैं। जैसे कि भगवद गीता के पहले अध्याय में अर्जुन इस बात को कहते हैं, वो कहते हैं कि अगर मैंने ये युद्ध किया तो कोई श्राद्ध करने वाला नहीं बचेगा, और फिर श्राद्ध करने वाला नहीं होगा तो क्या होगा, पतंती पितरो ये शाम लुप्त पिंडो दकक्रिया, पिंड उदक क्रिया अर्थात श्राद्ध करना, तो जब लुप्त ये बंद हो जाएगी तो जितने भी पितृलोक से जीव हैं वो गिर जाएंगे। तो पितृलोक में वहां पर आनंद लेते हैं जब तक यहां से श्राद्ध होता रहता है। इस तरह है कि मान लीजिए आपने अपने पूर्वजों को कहीं भेजा है और उनको आप हर वर्ष धन भेज रहे हैं कि आप बने रहिए, आप आनंद लेते रहिए। तो राजा ने देखा, वैखानस नाम था राजा का, तो राजा ने देखा स्वप्न में कि पितर जो उनके हैं, पूर्वज जो हैं, बड़े कष्ट में हैं। सुबह उठे तो बड़ा उनको दुख हुआ और उन्होंने ब्राह्मणों से पूछा कि मैं तो सारे कार्य ठीक कर रहा हूं और फिर ऐसा क्यों हो रहा है कि ये जो मेरे पूर्वज हैं ये कष्ट सहन कर रहे हैं। तो ब्राह्मणों ने कहा कि पास में ही पर्वत मुनि रहते हैं, उनका आश्रम है, अब वहां जाकर उनसे पूछिए। तो राजा वहां चले गए और उन्होंने पूछा, तो पर्वत मुनि ने उनसे इस एकादशी के व्रत को कहा कि आप अब बस थोड़े ही समय में जो एकादशी आने वाली है मोक्षदा एकादशी, इसका आप पालन कीजिए, और इसके पालन से ही आपके जितने भी पूर्वज हैं उनको अच्छी गति प्राप्त होगी। तो फिर राजा ने ऐसा किया और फिर से उसको स्वप्न में वे सारे लोग बड़े प्रसन्न दिखाई दिए। ये साधारण दृष्टि से मोक्षदा एकादशी का महात्म्य दिया गया है। अब अगर हम इसको भक्ति की दृष्टि से देखें तो मोक्षदा एकादशी में कहा गया कि ठीक है, राजा थे, उसके जो पूर्वज थे वे नरक में रहे और उसके बाद राजा ने पालन किया तब उनका मुक्ति हुआ या वहां से वे अच्छी गति को प्राप्त हुए। भक्ति की दृष्टि से हमें ये देखना चाहिए कि अगर हम अपने पूर्वजों के लिए, अपने माता पिता के लिए कुछ करना चाहते हैं तो सबसे अच्छी चीज उन्हें क्या प्रदान कर सकते हैं। जैसे अगर हम उन्हें पितृलोक भी दे देते हैं तो कोई लाभ नहीं है, क्योंकि पितृलोक में जाने के बाद फिर से इस पृथ्वी पर आना पड़ता है। तो फिर सबसे अच्छा उपहार एक संतान अपने माता पिता को क्या दे सकती है या अपने पूर्वजों को क्या दिया जा सकता है। धन दे देना, सुविधा दे देना, शारीरिक सुख प्रदान करना, ये तो बहुत क्षणिक है, थोड़े समय के लिए है, लेकिन ज्यादा समय तो नहीं रहेगा। मान लीजिए आप अपने माता पिता को बहुत अच्छा धन देते हैं, सुख सुविधा देते हैं, मृत्यु के बाद फिर क्या होगा, उनको फिर से जन्म लेना पड़ेगा, फिर से उनको मृत्यु होगी। तो इसीलिए सबसे अच्छा उपहार अगर कोई अपने माता पिता को देना चाहता है तो उसे भगवान की भक्ति करनी चाहिए और अपनी भक्ति का फल उन्हें देना चाहिए जिससे उनको सही दृष्टि में मोक्ष प्राप्त हो। ये जो मोक्ष शब्द है, जैसे मोक्षदा एकादशी का वर्णन हो रहा है, तो मोक्ष शब्द बड़े भ्रम में डालने वाला है। कई लोग सोचते हैं कि मोक्ष का अर्थ है अपने अस्तित्व को समाप्त कर देना, कई लोग सोचते हैं मोक्ष का अर्थ है भगवान बन जाना, और कई लोग सोचते हैं कि मोक्ष का अर्थ है भगवान में विलीन हो जाना। ये सारी गलत धारणाएं हैं, क्योंकि जीव कभी अपने अस्तित्व को नहीं खोता। जब कहा जाता है कि मोक्ष का मतलब है अपने अस्तित्व को समाप्त करना तो संभव नहीं है, या भगवान में विलीन हो जाना, ये भी बहुत अच्छे प्रकार का मोक्ष नहीं कहा गया। जैसे शिशुपाल, सबने देखा जब राजसूय यज्ञ हो रहा था, शिशुपाल वहां पर उपस्थित था, अग्र पूजा की बात आई, सबसे पहले किसकी पूजा करनी है, तो स्वाभाविक है अग्र पूजा उस व्यक्ति की होनी चाहिए यज्ञ में जो सर्वश्रेष्ठ है। तो उस समय सहदेव ने कहा अग्र पूजा श्री कृष्ण की होनी चाहिए। भीष्म देव ने समर्थन किया, बहुत अच्छी बात है, श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं, उन्होंने कई अवतार लिए हैं, उन्होंने कई लीलाएं की हैं, इसीलिए अग्र पूजा तो केवल उनकी होनी चाहिए। लेकिन शिशुपाल ने जब ये सुना, क्योंकि हृदय में इतना द्वेष था, वो सहन नहीं कर पाया, तुरंत खड़ा हो गया और उसने श्री कृष्ण की निंदा करना प्रारंभ कर दिया। और सब लोग वहां पर उपस्थित थे, भीम को बड़ा क्रोध आया, भीम जाने लगे उसको मारने के लिए, भीष्म देव ने रोक दिया। भीष्म देव ने कहा नहीं, श्री कृष्ण उपस्थित हैं, वो इसको सहन कर रहे हैं, तो निश्चित उनकी कोई योजना होगी। अब शिशुपाल बोलता रहा बोलता रहा। इसका इतिहास ऐसे है कि जब शिशुपाल का जन्म हुआ था तो उस समय उनकी माता ने श्री कृष्ण से एक वरदान मांगा था। जब श्री कृष्ण ने शिशुपाल को अपनी गोद में लिया तो ये घोषणा हो गई कि श्री कृष्ण ही शिशुपाल का वध करेंगे। तो उस समय माता ने, उन शिशुपाल की माता ने एक वरदान मांग लिया कि आप मुझे वरदान दीजिए, आप इसको मारेंगे नहीं। श्री कृष्ण ने कहा मैं एक समय में इसके 100 अपराधों को क्षमा करूंगा, लेकिन अगर उससे ऊपर गया तब फिर इसका वध कर दूंगा। तो माता ने बड़ी अच्छी तरह से शिशुपाल से कहा था अपराध करना, लेकिन 99 तक, 100 मत करना। और शिशुपाल जब भी भगवान की निंदा करता, कृष्ण की निंदा या कृष्ण के प्रति अपराध करता, गिनता रहता था, 99 होने पर चुप हो जाता था। लेकिन आज इतने क्रोध में था, इतने द्वेष में था कि अब शिशुपाल गिनना भूल गया। शिशुपाल बोलता रहा, श्री कृष्ण गिनते रहे, शिशुपाल गिनना भूल गया, श्री कृष्ण भूले नहीं। और जब 100 अपराध हो गए उसके बाद शिशुपाल का वध कर दिया श्री कृष्ण ने सबके सामने। और सबने देखा कि शिशुपाल की आत्मा उसके शरीर से निकलकर श्री कृष्ण में प्रवेश कर गई। ये एक प्रकार की मुक्ति कही जाती है, लेकिन जो भक्त होते हैं इसको स्वीकार नहीं करते। भागवतम में भगवान कपिल कहते हैं कि अगर मेरे भक्त को मैं मुक्ति देता भी हूं, दीयमानां न गृहणाति विना मत सेवनम जना, तो वह स्वीकार नहीं करते, वे तो सेवा को स्वीकार करते हैं, उनको मुक्ति नहीं चाहिए। मुक्ति भी लेते हैं तो केवल सेवा के लिए। तो इसीलिए सही दृष्टि में मुक्ति क्या है, भगवान की सेवा में रत होना, अपना पूर्ण जीवन भगवान की सेवा में लगाना और मृत्यु के बाद भगवान के धाम में जाकर फिर से उनकी सेवा करना, ये मुक्ति कही जाती है। तो इसीलिए अगर सबसे अच्छा उपहार हम अपने माता पिता को, अपने पूर्वजों को देना चाहते हैं तो हमें भक्ति करनी चाहिए। भक्ति ही एक मार्ग है जिसके द्वारा हम अपने पूर्वजों को और अपने आने वाले वंशजों को इस जगत से मुक्त कर सकते हैं, जिसका एक बहुत सुंदर उदाहरण प्रहलाद महाराज की कथा में आता है। प्रहलाद महाराज ने भी भक्ति की और जब नरसिंह देव ने उनसे कहा कि मांगो, कुछ तो मांगो, प्रहलाद ने कहा मैं व्यापारी नहीं हूं, मैंने आपकी भक्ति कुछ प्राप्त करने के लिए नहीं की, मैं तो केवल आपका भक्त हूं, कुछ नहीं चाहता हूं। फिर भी जब नरसिंह देव ने बहुत कहा कि प्रहलाद कुछ तो मांगो, तो प्रहलाद ने कहा कि ठीक है, आप कह रहे हैं तो आपकी प्रसन्नता के लिए मांगता हूं कि ये जो मेरे पिता हैं, बड़ा अपराध किया आपके प्रति इन्होंने। प्रहलाद ने ये नहीं कहा कि मेरे प्रति अपराध किया, प्रहलाद ने कहा आपके प्रति बड़ा अपराध किया, फिर भी इसे क्षमा कर दीजिए, इन्हें मुक्त कर दीजिए। तो भगवान ने कहा नरसिंह देव ने कि अरे प्रहलाद, तुम क्या बात कर रहे हो, जिस कुल में तुम्हारे जैसा भक्त जन्म लेता है उस कुल की तो 21 पीढ़ियां मुक्त हो जाती हैं। प्रभुपाद समझाते हैं कि 21 पीढ़ियों का अर्थ क्या है। वो कहते हैं न केवल इस जन्म के, आपका जो पूर्व जन्म हुआ है उसमें भी जो आपके माता पिता रहे हैं वो भी मुक्त हो जाते हैं। तो देखिए भक्ति करना कितना महत्वपूर्ण है। तो इसलिए मोक्षदा एकादशी से हमें ये सीखना चाहिए कि हम रीति रिवाजों में ना फंसकर हम भक्ति करें, हम साधारण धर्म में ना फंसकर आध्यात्मिकता का पालन करें। रीति रिवाज क्या हैं? रीति रिवाज होते हैं आप ये कीजिए ये प्राप्त होगा, इसको ऐसे करना चाहिए, उसको वैसे करना चाहिए, ये सब नियम दिए गए हैं, लेकिन इसी में फंस नहीं जाना चाहिए। नियमों का उद्देश्य होता है, तो इसीलिए रीति रिवाजों में ना फंसकर उसके उद्देश्य भक्ति को प्राप्त करना चाहिए। साधारण धर्म में ना फंसकर उस आध्यात्मिकता को प्राप्त करना चाहिए। आध्यात्मिकता क्या सिखलाती है? आध्यात्मिकता हमें सिखलाती है कि साधारण धर्म आपको बांध रहा है एक समाज से, एक धर्म से, एक शरीर से, लेकिन आध्यात्मिकता आपको मुक्त करती है हर उस भावना से जो इस जगत में बंधन का कारण है। इसीलिए उद्देश्य ये होना चाहिए मोक्षदा एकादशी के दिन हम पालन ये करें कि किस प्रकार हम सबसे अच्छा उपहार अपने पूर्वजों को दें। जैसे राजा वैखानस, वो चाहते थे कि मेरे पूर्वज इतने कष्ट सह रहे, उनका कष्ट दूर हो। इस जगत में केवल कष्ट दूर करना पूर्ण नहीं है। जैसे कोई भूखा है, हमने उसको खिला दिया, उसका कष्ट दूर हो गया, लेकिन कल फिर उसको कष्ट होगा। सच्चा कष्ट दूर करना है तो व्यक्ति को जन्म मृत्यु से परे भेजना चाहिए। सही दृष्टि में समाज सेवा करनी है तो समाज के सभी लोगों को भक्ति प्रदान करनी चाहिए, जिससे फिर कभी उन्हें जन्म ना लेना पड़े, ना वो भूखे रहें, ना वो कष्ट में आए। इसीलिए दो चीजें होती हैं, श्रेयस और प्रेयस। श्रेयस अर्थात बहुत लंबे समय तक जो लाभ दे उसको करना, और प्रेयस बहुत जल्दी जो लाभ देती है, जरा दिखता है बस लाभ, लेकिन थोड़े समय का होता है। तो इस जगत में हम जो चीजों को प्राप्त करते हैं वो थोड़े समय के लिए है। आपका धन थोड़े समय के लिए है, यश बल थोड़े समय के लिए है, मृत्यु होती है, सब समाप्त, फिर से वही चीजों को लेना पड़ता है, फिर से शरीर लेना पड़ता है। लेकिन ऐसी चीजें हमें करनी चाहिए जो श्रेयस हो। जैसे अर्जुन ने जब भगवान से भगवत गीता में प्रश्न किया, अर्जुन ने ये कहा कि मेरे लिए जो श्रेयस हो वो बताए। ये श्रेयस्यान निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम शाधि माम त्वं प्रपन्नम, कि मैं आपका शिष्य हूं, इसलिए जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो उसको बताइए, प्रेयस नहीं। तो इसीलिए सबसे अच्छा उपहार अगर हम किसी को देना चाहते हैं अपने पूर्वजों को, तो हमें भक्ति करनी चाहिए, जैसे प्रहलाद ने की। तो प्रहलाद की भक्ति का फल ये हुआ कि उसके पूर्वज भी मुक्त हो गए, और इतना ही नहीं, आने वाली पीढ़ियां भी मुक्त हुई। तो भक्ति इसीलिए कहा गया है, बहुत सुंदर श्लोक में कहा गया है, कुलम पवित्रम जननी कृतार्थम वसुंधरा वा वसती च धन्य, कि जब कोई भक्ति करता है तो उसका कुल पवित्र हो जाता है, माता पिता धन्य हो जाते हैं, वो स्थान धन्य हो जाता है, और उसके जो पूर्वज हैं, यहाँ वर्णन आ रहा है कि अपने पूर्वजों के लिए उसने मोक्षदा एकादशी का पालन किया, उसके पूर्वज हैं वो नृत्य करने लगते हैं स्वर्ग में या जहाँ भी हैं। क्यों? क्योंकि ऐसे कुल में एक व्यक्ति जन्म लेता है जो भगवान के नामों का उच्चारण करता है, ये शाम कुले वैष्णव नाम घेयम। तो इस दृष्टि से हमें ये देखना चाहिए कि मोक्षदा एकादशी जो मोक्ष प्रदान करती है, सच्चा मोक्ष क्या है। केवल जन्म मृत्यु से परे जाना ये सच्चा मोक्ष नहीं है। कई स्थानों में, कई समाजों में मोक्ष को माना जाता है कि बस विलीन हो जाना या भगवान बनना, वो सच्चा मोक्ष नहीं है। या ऐसी स्थिति जहां कुछ नहीं है, शून्य, वो भी मोक्ष नहीं है। क्यों मोक्ष नहीं है शून्य का स्थान? क्योंकि आत्मा कभी भी बिना कार्य के रह नहीं सकती। भगवत गीता में भगवान कहते हैं, नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत, आत्मा एक क्षण के लिए भी अकर्मकृत नहीं हो सकती। तो फिर जब आत्मा को कर्म करना है तो शून्य या फिर ऐसी स्थिति जहां कुछ नहीं है, वहां क्या कर्म करेगी? सच्ची मुक्ति क्या है? सच्ची मुक्ति वो नहीं है जहां सारी विविधताएं समाप्त हो जाएं। सच्ची मुक्ति वो है कि हम इस जगत को त्याग कर आध्यात्मिक जगत में जाकर भगवान की सेवा में लगे। ये सच्ची मुक्ति है जिससे हम सही दृष्टि में अपने जीवन को सफल कर सकते हैं। तो इसीलिए मोक्षदा एकादशी अर्थात मोक्ष प्रदान करने वाली, जिस दिन भगवान ने भगवत गीता, तो भगवान ने ये दिन क्यों चुना? क्योंकि भगवत गीता का ज्ञान ऐसा है जो सही दृष्टि में हमें मोक्ष देता है। मोक्ष किससे चाहिए हमें? क्या मोक्ष केवल इस जन्म मृत्यु से चाहिए? सच्चा मोक्ष चाहिए तो भगवान बताते भगवद गीता में कि सबसे पहले मोक्ष प्राप्त करने के स्तर होते हैं, तो सबसे पहले हमारा मोक्ष होना चाहिए इन भौतिक वासनाओं से। वासनाएं हैं जो हमें बांध कर रखती हैं इस जगत में, उनसे मोक्ष होना चाहिए। आगे चलकर हमारा मोक्ष हर प्रकार की आसक्तियों से होना चाहिए, और सच्चा मोक्ष है कृष्ण में आसक्ति को बढ़ाना। तो भगवद गीता जो भगवान ने मोक्षदा एकादशी के दिन कही, ये हमें सिखलाती है कि कैसे हम भगवान से आसक्ति बढ़ा सकते हैं और उस आसक्ति को बढ़ाकर अपने जीवन को सफल कर सकते हैं। तो जैसे राजा की कथा यहाँ दी गई है, इन कथाओं के द्वारा ये जो पुराणों में कथा दी जाती है, कभी कभी व्यक्ति भ्रमित हो जाता है कि अरे वहाँ कहा गया ये प्राप्त होगा वो प्राप्त होगा, तो क्या हमें केवल वही करना है इस भौतिक चीजों की प्राप्ति के लिए, अपने पितरों के लिए या अपने समाज के लिए या पुत्र की प्राप्ति के लिए भक्ति करनी है? नहीं। तो फिर पुराणों में क्यों दिया गया है? ये जान लीजिए कि पुराणों में कई प्रकार की चीजों का वर्णन है। पुराणों में ऐसी चीजें दी गई हैं जो केवल लोगों को शास्त्र की ओर आकर्षित करने के लिए हैं। जैसे कभी कभी बच्चा स्कूल नहीं जाता तो माँ कहती कि ठीक है अगर तुम स्कूल जाओगे तो तुम्हें चॉकलेट मिलेगी। अब चॉकलेट देना ये उद्देश्य नहीं है, उद्देश्य क्या है? वो स्कूल जाकर पढ़ाई करे। लेकिन बच्चा क्यों जाता है? क्योंकि उसको चॉकलेट मिल रही है। इसी तरह शास्त्रों में भी उन लोगों के लिए जो कोई शास्त्र का पालन नहीं करते, नियम का पालन नहीं करते, उन लोगों के लिए शास्त्र में ऐसी व्यवस्था की गई है जिसको कर्मकांड कहा जाता है। क्या व्यवस्था है वो? कि उनको कहा जाता है अच्छा आप ये करोगे तो ये प्राप्त होगा, ये करोगे तो ये प्राप्त होगा। अर्थ क्या है? अर्थ ये है कि कम से कम वो शास्त्र का पालन करना शुरू करें, भले ही वो किसी भौतिक वस्तु की प्राप्ति के लिए कर रहे हैं, जैसे सुख के लिए, पुत्र के लिए, धन के लिए, स्वर्ग के लिए इत्यादि। स्वर्ग भी इसी जगत का हिस्सा है। तो अगर किसी भौतिक इच्छा के लिए भी वो कर रहे हैं तो भी कम से कम शास्त्र से तो जुड़ रहे हैं, नियम का पालन करने लग गए हैं। पहले तो कोई नियम का पालन नहीं करते थे, तो इसीलिए ये कर्मकांड दिए गए हैं। इसीलिए इतना, और शास्त्रों का, वेदों का बहुत बड़ा हिस्सा कर्मकांड का है, ताकि हर प्रकार के लोग जुड़ सकें। लेकिन जब व्यक्ति कर्मकांड करते 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 एक स्थिति में आता है कि जब उसके परे सोचने लगता है कि क्या है ये जगत में, मैं इतना प्रयास कर रहा हूं प्रसन्न नहीं हो रहा, तब वो ज्ञान कांड में आता है, ज्ञान लेने लगता है, अपने आसपास का ज्ञान, भगवान का ज्ञान, प्रकृति का ज्ञान, तब वो ज्ञान कांड में आता है। और जब उसके ज्ञान की पूर्णता होती है तो वो उपासना कांड में आता है। तो वेदों में तीनों दिए गए हैं, कर्मकांड है, ज्ञान कांड है और उपासना कांड है। तो उपासना करने लगता है, आराधना करने लगता है। पद्म पुराण में शिव जी बताते हैं आराधना नाम सर्वेशाम विष्णुर आराधना परम, कि सारी आराधनाओं में भगवान विष्णु की या श्री कृष्ण की आराधना परम है। तो फिर वो उसको करने लगता है। तो इसीलिए हम लोग देखते हैं कि एकादशी के महात्म्य में कहा जाता है इससे ये प्राप्त होगा, आप ये करेंगे तो ये प्राप्त होगा। उद्देश्य वो नहीं है, उद्देश्य केवल आपको नियमों तक लाना है। लेकिन भक्ति क्या है? अब नियमों का पालन करते हुए उसके सही उद्देश्य को जानना और उसकी प्राप्ति करना, तो उसको भक्ति कहा गया है। इसीलिए वेदों का सार है भक्ति। वेदेश्च सर्वेर अहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेव चाहम। भगवान कहते हैं अगर वेदों में जानने योग्य कोई चीज है तो वो मैं हूं, श्री कृष्ण। तो वही वेदों के संकलन करता है, वही वेदों को प्रकट करते हैं। तो इसीलिए जब हम मोक्षदा एकादशी के दिन एकादशी के व्रत का पालन करें, एकादशी व्रत के पालन की विधि हम पहले वर्णन कर चुके हैं, तो जब हम पालन करें तो इस उद्देश्य से करें कि हम ये कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, और इसको करने से हमारी जितनी इच्छाएं हैं वो प्राप्त हो जाएंगी हमें। भगवान भौतिक इच्छाएं भी दे देते हैं उस व्यक्ति को जिसको लगता है भगवान को कि ये भौतिक इच्छा के द्वारा मुझसे जुड़ेगा। तो इसलिए हमारे मन में कोई इच्छा क्यों ना हो, शास्त्रों में कहा गया है अकामो सर्व कामो वा मोक्ष कामो उदारधी तीव्रेन भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। शास्त्र कहता है कि आप अकामो, कोई इच्छा नहीं हो हृदय में, सर्व कामो, भरी हुई हो इच्छाएं हृदय में, मोक्ष कामो, अगर आपकी इच्छा मोक्ष प्राप्ति की है तो भी क्या करना चाहिए, इन सभी अवस्थाओं में अकामो सर्व कामो वा मोक्ष कामो उदारधी तीव्रेन भक्ति योगेन, बड़ी तीव्रता से गंभीरता से भक्ति योग करना चाहिए। किसके लिए? पुरुषम परम, जो परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण हैं। तो इसीलिए मोक्षदा एकादशी से हम ये समझ सकते हैं कि सही दृष्टि में न केवल हम मोक्ष की प्राप्ति करें बल्कि हमसे संबंधित जितने भी लोग हैं उनको भी हम मोक्ष की प्राप्ति कराएं, बड़ी गंभीरता से भगवान की भक्ति करके, श्री कृष्ण की भक्ति। तो इसीलिए एकादशी के दिन पर बहुत ज़्यादा नाम का जप करना चाहिए, विशेषतः मोक्षदा एकादशी, क्योंकि भगवान ने भगवद गीता को इस दिन प्रकट कराया तो इस दिन भगवद गीता के सारे श्लोकों को पढ़ लेना चाहिए। कम से कम साल में एक बार तो हम 700 श्लोक भगवद गीता के पढ़ सकें। तो इस दिन ज़्यादा से ज़्यादा पठन करना चाहिए भगवद गीता का, भगवान के नाम का जप करना चाहिए और क्षमता अनुसार यथा योग्य भगवान की सेवा करनी चाहिए। अगर इतना हम लोग करते हैं, और क्यों एकादशी के ही दिन, हम बाकी दिन भी इसको करते रहें लेकिन विशेषतः एकादशी के दिन करें तो निश्चित भगवान की प्रसन्नता इसमें होगी और हम सबको सही दृष्टि में जीवन का उद्देश्य प्राप्त होगा। हम रीति रिवाजों से निकलकर भक्ति तक पहुंच सकेंगे, साधारण धर्म को त्याग कर आध्यात्मिकता को प्राप्त कर सकेंगे, इस भौतिक जगत को त्याग कर हम आध्यात्मिक जगत को प्राप्त कर सकेंगे जो सही दृष्टि में मोक्ष है। हरे कृष्णा।